हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अकारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं धराति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंध छठा अध्याय श्लोक संख्या 19। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, दिदृक्षुस्तद् अहं भूयः प्रणिधाय मनोवृदि, वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुर। दिदृक्षुस्तद् अहं भूय प्रणिधाय मनोवृदि, वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुर। दिदृक्षुस्तद् अहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि, वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुर। दिदृक्षुस्तद् अहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि, वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुर। दिदृक्षुस्तद् अहं भूय प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुर दिदृक्षुस्तद् अहं भूय प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुर दिदृक्षुस्तद् अहं भूय प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुर दिदृक्षुस्तद् अहं भूय प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुर शब्दों का अर्थ दिदृक्षुस्तद् अहम् दिदृक्षु अर्थात देखने को इच्छुक तद् वह अहम् में भूय अर्थात सिर से प्रणिधाय मनोरिधि प्रणिधाय मतलब मन को एकाग्र करके मन को हृदि हृदय में वीक्षमाणो बिना पश्यम वीक्षमाण का मतलब होता है देखने के लिए प्रतीक्षारत अपि होते हुए ना पश्यम ना मतलब कभी नहीं अपश्यम मतलब उन्हें देखा अवितृप्त बिना संतुष्ट हुए इवातुर सदृश संतप्त इवा मतलब सदृश और आतुर मतलब संतप्त अनुवाद मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद भी मैं उन्हें ना देख सका इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है यह संपूर्णतया भगवान की अहितु की कृपा पर निर्भर करता है हम भगवान से ये मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम सूर्य से ये मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है उसी तरह से भगवान भी अपनी अहितु की कृपावश ही उपस्थित होता है मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त है वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से बांधे जा सकते हैं वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं, ना अनुभव गम्य हैं। वे जब भक्त के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं श्री प्रभुपाद की जय हो मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारणं अत्यंत ही सुंदर श्लोक है बहुत ही समझने का है क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि जब नारद मुनि के हृदय में भगवान प्रकट हुए, जैसा कि उन्होंने बताया, ध्यायत शरणम भोजम भावने चित चेतसा, वे भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाने लगा रहा था और हृदय के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे थे। औत्कंठ्या शुक्ला क्षस्य हृदयासी मे शनय हरि, मेरे नेत्रों से अश्रुकला आंसू जो है वो बह रहे थे और मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। और उसके बाद उन्होंने बताया 17 में, प्रेमाति भिरन प्रेमाति भरना निर्भिन्न पुलकांको निर्वित आनंद संप्लवी लीनो न पश्यम उभयम मुने, कि इतना प्रेम उनके हृदय में भगवान के लिए उत्पन्न हो गया और शरीर जो है वो पुलकित हो रहा था, रोमांच हो रहा था, आनंद से गदगद हो रहे थे और इतना प्रेम आया भगवान के ऊपर के हृदय नेत्रों में इतने आंसू भर गए कि वो ठीक तरह से भगवान के रूप को भी नहीं देख सके। और कल श्लोक नंबर 18 में बताया, रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम अपश्यन सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव, कि मैं भगवान के उन रूप को मैं देख रहा था और तो हृदय में बैठी हुई जो हृदय के अंदर जो भी दुख था, संताप था, वो सब दूर हो गया और अत्यंत ही आनंद मुझे महसूस हो रहा था। अचानक से क्या हुआ, अपश्यन संसोत्तस्थे, अचानक से मैं खड़ा हो गया क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, वो रूप खो गया। वैक्लव्या दुर्मना इवा, और इस तरह से मैं इतना ज्यादा वैक्लव यानी कि बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया। और आज नारद मुनि बता रहे हैं, दिदृक्षुस्तद अहम भूय, दिदृक्षुस, अभी क्योंकि एक बार मैंने देख लिया था, अभी मैं वापस से देखने की इच्छा कर रहा था। दिदृक्षुस्त मतलब उसको देखने का बहुत ही तीव्रता से इच्छा हो रही थी। तद अहम भूय, भूय मना फिर से, एक बार देख लिया, अभी मुझे पुनः उस रूप को देखने का इतना हृदय के अंदर आतुर हो रहा था, बहुत इच्छा हो रही थी। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि अब पुनः उनको देखे बगैर, भगवान का दर्शन किए बगैर उनका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर से क्या तरीका किया, प्राणिधाय मनोरिधि, प्राणिधाय मन को एकाग्र करके, मन को जैसे पहले उन्होंने किया था ना श्लोक नंबर 16 में, तब नारद मुनि ने क्या बताया था, नारद मुनि ने बताया था, तस्मिन् निर्मनुजैरण्य पिपलो पस्थ आश्रित, इस तरह से मैं वीरान जंगल में एक पिपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया था और आत्मनात्मानमात्मस्थम यथाश्रुतम अचिंतयम, जिस तरह से आत्मनात्मानम आत्मस्थम मेरे अंतःकरण में स्थित जो परमात्मा है उनका ध्यान कर रहा था। तो यानी योगिक यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, नारद मुनि ने अष्टांग योग के द्वारा हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाया था और आज भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दिदृक्षुस्तद अहम भूय, मुझे वापस से उनको देखने की तीव्र इच्छा हो रही थी, प्रणिधाय मनोहृदि, इसलिए मैंने दोबारा से हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान के ऊपर मन को एकाग्र किया और प्रणिधाय मतलब एकाग्र किया और हृदय में उनका दर्शन करने का भरसर प्रयास किया। लेकिन आगे कहते हैं, वीक्षमाणोपि न पश्यम, वीक्षमाणो मतलब देखने के लिए बहुत बहुत प्रतीक्षा किया मैंने, बहुत बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी न पश्यम, न मतलब कभी नहीं, पश्यम मतलब उन्हें देखा नहीं। मैंने दोबारा से वही प्रोसेस अपनाया, बहुत से प्रयास भी किया और अपने समस्त प्रयासों के बावजूद भी न पश्यम नहीं देखा, अवितृप्त इवातुरा, अवितृप्त का मतलब होता है फिर मैं, मुझे संतुष्टि प्राप्ति नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे जरूर देखना था। एक बार मैंने जिस भगवान के दर्शन कर लिए थे और उनके खो जाने के बाद मुझे और कोई चीज संतुष्ट कर ही नहीं रही थी, मुझे एनहाउ वापस से उसी भगवान को देखना था, इसलिए मैंने वापस से वही प्रोसेस अपनाया, लेकिन फिर भी मुझे भगवान वापस दिख ही नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गया और बहुत ज्यादा संतप्त यानी दुख मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है। यांत्रिक का क्या मतलब होता है? कि हम किसी भी मैकेनिकल वे से भगवान को नहीं देख सकते। ये विधि है ना अष्टांग योग की, उसको भी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर यांत्रिक विधि कहा है, यानी कि भगवान को देखने का ये तरीका नहीं है। अब इसमें क्या है, ये मैकेनिकल वे में कभी ना कभी कोई ना कोई एरर आ सकता है ना। जैसे अक्सर हम गाड़ी का क्या प्रोसेस होता है, अगर हमारे पास एक कार है तो कार में हम लोग बैठे हैं तो हम क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पर मुझे पहुँचना है, ये मेरा गोल है। तो है तो मैकेनिकल वे ना, लेकिन हमने उसको गोल बना दिया कि भाई मुझे एक घंटे में यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन रास्ते में अगर टायर पंचर हो जाए या फिर है ना ब्रेक फेल हो जाए, तो फिर वो गाड़ी भले ही ये तरीका एक तरीका है उस जगह पर पहुंचने का, लेकिन ये परफेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि उस विधि में एरर आने के कारण हम सफलता से चूक सकते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8.25 और 26 में, योगियों के विषय में बताया भगवान ने, 8.25 में भगवान ने कहा, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायणं तत्र चंद्रमा संज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात धूमिर रात्रिस्तथा कृष्ण, यानी कि रात के समय अगर बहुत ही धुंध छाई हुई होती है और कृष्ण पक्ष जब सूर्य दक्षिणायन के क्षण मास में, यानी 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में होता है और 6 महीने उत्तरायण में होता है, तो ये जो दक्षिणायन में अगर मृत्यु हो जाती है, तत्र चंद्रमसम ज्योतिर, फिर वो चंद्रलोक को जाता है अगर वो योगी है और योग का सही परफेक्ट पालन भी कर रहा है। लेकिन अगर समय ये वाला आ गया, कौन सा, रात्रि के समय हो, धुंध छाई हुई हो, कृष्ण पक्ष हो और दक्षिणायन में यदि सूर्य है, तो फिर क्या होगा, तत्र चंद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते, वो चंद्रलोक को जाएगा लेकिन वापिस से आएगा। याद है आप लोगों को भीष्म पितामह जब उनकी मृत्यु, यानी कि जब वो शीर्ष पर सीरो के बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो वो उसी का वेट कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण की ओर जाए, तो फिर उत्तरायण में जब जाएगा तो फिर भगवान ने क्या कहा है कि अब देखो आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 26 में, 8.26 में भगवान ने कहा, शुक्ल कृष्ण गति हेत जगत शाश्वते मते जगत शाश्वती मते एकया यात्या या निवृत्तम अन्यया वर्तते पुनः। कि शुक्ल कृष्णे गति हेता, अब इस संसार में जगत शाश्वते मते, भगवान कहते हैं कि मेरे मत से इस संसार से जाने के 2 रास्ते हैं, शुक्ल और कृष्ण, या जब शुक्ल पक्ष में होता है या कृष्ण पक्ष में सूर्य होता है, दक्षिणायन में होगा या उत्तरायण में होगा, तो फिर या तो अंधकार वाले दिनों में या रोशनी वाले, जो कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष, इन 2 टाइप की टाइम्स होते हैं, समय होता है जिसमें कि कोई जाता है यहाँ से, मृत्यु होती है। तो भगवान कहते हैं एकया याति नावृत्ति, कि एक उसमें से, एक में से जाने से आप वापस से नहीं आओगे, अन्य यावर्तते पुनः, और दूसरे रास्ते से जब जाओगे तो वापस से आपको आना पड़ेगा। यानी कि ये अगर आप बिल्कुल परफेक्ट योग भी कर रहे हो, फिर भी रास्ता अगर आपका अंधकार वाला होगा, यानी कृष्ण पक्ष होगा, तो फिर पुनः लौटना पड़ेगा, और यदि शुक्ल पक्ष होगा तो आना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बताने का मतलब क्या है कि भले ही योग के द्वारा परमात्मा के दर्शन करे जाते हैं, लेकिन एक विधि है, लेकिन वो परफेक्ट विधि नहीं है, क्योंकि भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप शुक्ल पक्ष से जाओ, हो सकता है कृष्ण पक्ष से जाओ, कृष्ण पक्ष से वापस जाओगे तो वापस आपको आना पड़ेगा। लेकिन भगवान साफ साफ कहते हैं, मन्मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरी शरण में आओगे और मेरे नाम का भजन करोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, फिर मैं तुमसे तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूँ, मैं मामे वैशति सत्यम ते, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। फिर चाहे आप शुक्ल पक्ष में जाओ, चाहे कृष्ण पक्ष में जाओ, चाहे आड़ा जाओ, टेढ़ा जाओ, सीधा जाओ, किसी भी तरह से जाओ, लेकिन यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी भक्ति करते हो, मुझे नमस्कार करते हो, तो फिर जहां से भी तुम जाओगे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। वास्तव में भक्तों, यहाँ पर दिखने में ऐसा लगता है कि जो भक्त होता है भगवान उसका पक्षपात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अब योगी भी तो कितनी मेहनत से ये सब योग कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं उसकी गारंटी नहीं है कोई भी। लेकिन भक्त की भगवान कहते हैं प्रतिज्ञाने प्रियोसि मे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। एक तरफ भगवान ने कह दिया 9.29 में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मेरे लिए तो सब बराबर है, कोई द्वेष ही नहीं, किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी से प्रिय प्रेम नहीं करता हूँ, फिर ये क्या है? ये तो आंखों देखा पक्षपात है कि भक्त को बोलते तुम भले जिधर से भी जाओगे मैं तुम्हें तुम्हें वापस अपने धाम में लेकर जाऊंगा, यान्ति मध्या जिनो पिमाम। और उसके बाद ये भी बोल दिया, माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परम, मुझे प्राप्त कर लोगे ना तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि फिर वहां से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा और कभी भी इस दुख भरे जीवन में, दुख भरे संसार में आपको आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो परम दिए। लेकिन इसके अतिरिक्त चाहे तुम सत्यलोक में चले जाओ, भगवान ने साफ कहा 8.16 में, आब्रह्म भुवनालोक पुनरावृति नो अर्जुन माम उपैत्ति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तुम अगर ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास आ जाओगे फिर नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भगवान केवल पक्षपात क्यों करे भक्तों का? तो इसका उत्तर अत्यंत ही सरल और प्यारा सा है कि भले ही एक माता के चार बच्चे हों और चारों बच्चों से माता एक जैसा स्नेह करे, भगवान कहते हैं ममहि वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, सारे जीव प्राणी मेरे अंश हैं। भले ही माता सब बच्चों के साथ एक जितना ही प्रेम करती, किसी का पक्षपात नहीं करती, लेकिन उनमें से जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, चारों बच्चे भले बुला रहे हैं मम्मी आप इधर आओ, मम्मी इधर आओ, मुझे आपसे काम है, माँ आपसे काम है, वो सबको बोलेगी आप चुप करके बैठो, नजर नहीं आता छोटा बच्चा रो रहा है, पहले मैं इसको तो संतुष्ट कर लूँ फिर तुम्हारी बात भी सुनूंगी, है ना। पहले अपने छोटे से बच्चे के पास जाएगी, उसे खिलाएगी पिलाएगी, उसे प्रेम करेगी, चुप कराएगी, उसके बाद उनके बारे में सोचेगी। क्यों ऐसा करती है? क्या माता के हृदय में सब बच्चों के लिए एक जितना प्रेम नहीं है? बेशक है, परंतु जो छोटा बच्चा है वो ना बहुत हेल्पलेस होता है, इसे माता की फर्स्ट अटेंशन जो होती है वो उस छोटे बच्चे के ऊपर होती है। उसी तरह से जो कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके दूसरे भी बहुत सारे सहारे होते हैं। जैसे कर्मी होते हैं वो अपने संबंध, उनके बहुत सारे संबंध होते हैं, उनको केवल भगवान का सहारा नहीं होता है। वो क्या सोचते हैं कि मेरा पति मेरी रक्षा करेगा, मेरी पत्नी है मेरा ख्याल करने वाली, डॉक्टर है ख्याल करने वाला, या संतान है, या फिर दूसरे देशवासी, फ्रेंड सर्कल, ये सब में उन्हें एक तरह सा सहारा होता है कि ये भी है मेरे, भगवान भी है पर ये सब है ख्याल रखने वाले। ज्ञानी को अपने ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का बहुत भरोसा होता है, अपने विद्या का भरोसा होता है, लेकिन भक्त के पास कुछ नहीं होता कृष्ण के अलावा। भक्त का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम। उसके पास ना ज्ञान की ना कर्म के अनुसार कुछ भी और कोई कार्य नहीं होता, और कोई इच्छा नहीं होती, और कोई सहारा नहीं होता। भक्त तो एक चातकी पक्षी की तरह होता है। एक पक्षी होता है, चातकी पक्षी उसको बोलते हैं, शास्त्र में अक्सर उसका उदाहरण आता है। उसे भले कितनी ही प्यास लगी हो, लेकिन वो तब तक पानी नहीं पीता जब तक बादल से बरसकर पानी की बूंद डायरेक्ट से उसके माउथ में नहीं जाती। वो भले प्यासा मर जाएगा बादल की ओर निहारते निहारते, लेकिन जब तक डायरेक्ट से बारिश की बूंद उसके मुख में नहीं जाएगी तब तक वो पानी नहीं पिएगा। उसी तरह से देव जो भक्त होता है तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि भगवान का साक्षात्कार नहीं करता, जब तक भगवान के साथ प्रेम का संबंध निर्माण नहीं होता, जब तक उसे भगवान के विषय में श्रवण अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्त के हृदय में इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती। भक्त को न इंद्रिय सुख चाहिए और न ही मुक्ति चाहिए, न देवताओं के किसी वरदान की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं 9.22 में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ताय योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो बहुत अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के मैं पूर्ण करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी सुरक्षा करता हूँ। तो भक्त की केवल एक ही आवश्यकता होती है, भगवत संबंध, भगवत के साथ, भगवान के साथ अपना प्रेम संबंध निर्माण करने के अतिरिक्त उसकी कोई इच्छा नहीं होती। और भगवान का क्या ये प्रण है कि ऐसे भक्त अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, और कुछ नहीं चिंतन करता, जो केवल मेरा चिंतन करता है उसकी मैं समस्त इच्छाओं को पूरा करता हूँ। तो फिर भगवान भले ही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया कि भगवान स्वतंत्र है, चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, वो स्वराट है, लेकिन हम यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने हमें बहुत ही सुंदर बताया कि हम भगवान से ये मांग नहीं कर सकते कि वो हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए। हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि अभी मैंने योगिक क्रिया की है, चलो आ जाओ हमारे मेरे सामने, मुझे अभी क्योंकि मैंने योग क्रिया किया, अष्टांग योग पद्धति से मैंने ये कार्य किया है, अब आपको आना पड़ेगा। भगवान गॉड इज इंडिपेंडेंट है, और वी कैन नॉट ऑर्डर हिम कि आप आइए और अब आ जाइए मेरे सामने, परंतु हम केवल भगवान के साथ भगवान को प्रेम से विनती कर सकते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। वी कैन बेग, प्लीज कम कृष्णा, मैं आपके दर्शन के अतिरिक्त अब एक क्षण भी, जैसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द हे गोविंद, आपके विरह में एक एक पल एक एक युग के समान दिखता है, और नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही हैं, तथा सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो रहा है। तो जैसे हम जगन्नाथ भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतमे। हे जगन्नाथ, आप तो संपूर्ण जगत के मालिक हैं, जगत के स्वामी हैं, नयन पथगामी कृपया मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाइए। अब इन नेत्रों को कुछ और देखने का कोई इच्छा नहीं है, बस केवल आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो केवल आपसे ही प्रार्थना है कि मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाइए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बताया कि जिस तरह से सूर्य को आप ये ऑर्डर नहीं दे सकते, अभी रात हो, मतलब विराट हो, सूर्य अस्त हो गया हो, और आप बहुत प्रयास करो, बहुत बड़ा लाइट लेकर जाओ आसमान में, और वहां पर जाके ढूंढो सूर्य गया कौन सी साइड, इस साइड पे गया था, डूबा था, तो उसको निकालना है। भले आप अपने कितने ही प्रयास क्यों ना लगा लो, लेकिन सूर्य को आप अपने प्रयास से नहीं प्रकट कर सकते हो। जब उसकी इच्छा होगी तभी वो आपके सामने आके प्रकट होगा, है ना। ऐसा थोड़े है कि कोई अपनी इच्छा से या कोई अपनी शक्ति से जाके सूर्य को देख सके। जब तक सूर्य की अपनी इच्छा नहीं होगी, जब तक भगवान उसे यह आदेश नहीं करेंगे, तब तक वो है ना नहीं निकलेगा, आपके प्रयासों से नहीं है। उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बोलते हैं, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट एक्शन सच अ वे कृष्णा विश टू सी यू। आपको भगवान को देखने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे कार्य करो कि भगवान स्वयं आपको अपना दर्शन देने के लिए आपके समक्ष आ जाए। श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे, यानी कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को आप करते रहो और भगवान से, भगवान जब आपके प्रयासों से, प्रयासों को देखकर प्रसन्न होंगे तो स्वतः आपके सामने प्रकट होंगे। भगवान किसी यांत्रिक विधि से नहीं बांधे जा सकते। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को केवल प्रेम और भक्ति के बंधन में बांधा जा सकता है, जैसे यशोदा माई ने उन्हें बांधा था। अपने प्रेम के बंधन में ही भगवान को बांधा जा सकता है, वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से बांधे जा सकते हैं। वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य है ना अनुभव गम्य है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों से या अपने मन से उनको अनुभव कर सकते हैं। वे जब तक भक्त के निष्ठावान प्रयासों से प्रसन्न होते हैं और जब वे चाहते तब स्वेच्छा से ही देखते हैं, जब तक उनकी अपनी इच्छा नहीं। जैसे अब ना अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का जो बॉस होता है, अगर कोई एम्प्लॉयर होता है या कोई वहाँ पर क्लर्क होता है, उसका दिल हो कि मैं जाके बॉस को देखना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है। वो अभी बॉस का रूम बहुत आगे होता है और बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बैठे हुए होते हैं, तो हर किसी को तो अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है ना। तो वो क्लर्क आके रोजाना गार्ड्स को बोले कि मुझे ना ऑफिस के बॉस के दर्शन करने हैं, तो वो क्लर्क को बोलेंगे आप इधर बैठ जाओ, यहाँ से गुजरेंगे तो आप देखना। लेकिन ये मर्जी मतलब ऐसा नहीं है कि वो जब दिल चाहे उसको जाके देख सकता है। लेकिन अगर कोई ऑफिस का जो काम करने वाला होता है ऑफिसर, वो अगर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्य करता है, बहुत ही ना उसके कारण ऑफिस में उन्नति हो रही है, बहुत अच्छा सबको पता चल रहा है, बहुत अच्छा अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो फिर हो सकता है इतना प्रसन्न हो जाए वो उसके कार्य से कि उसके सामने आकर खुद ही आके उसकी तारीफ करे, वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। या फिर वहीं पर अपने ऑफिस अपने रूम में ही उसको बुला ले कि जाओ उसको बुला के आओ, कितना अच्छा काम कर रहा है ना। यानी कि जब आप अच्छा करोगे तो फिर आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान है, अगर आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से कर रहे हो, अपनी भक्ति को अच्छे तरीके से कर रहे हो, गुरु गौरंग की को प्रसन्न करने के लिए आप अच्छे तरीके से भक्ति के नियमों का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपको जरूरत नहीं है भगवान के पास जाने की, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य भी नहीं है कि आप भगवान को अपने नेत्रों से, अपने मन से या फिर अपनी बुद्धि से खोज सको। भगवान जब स्वयं चाहते हैं तो भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं, और वो जब दिल करेगा, जब आपके प्रयासों से देखेंगे कि भाई इनके प्रयास इतने ज्यादा सिंसियरली वो प्रयत्न कर रहा है, तो भगवान स्वतः आपके सामने आके प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया जाए कि उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन नारद मुनि को भगवान वापस से दर्शन नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान को देखने की विधि एक ही है। भगवान बताते हैं 11.53 में, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेष्टया शक्य एवं विधो दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदैर्न तपसा, न मैं वेदों के अध्ययन से, ना तपस्या करने से, ना दानेन चेष्टया और ना ही दान देने से कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, भले वो वेद सारे वेदों को अध्ययन कर ले, कंठस्थ क्यों ना कर ले, तपस्या कर ले, कितनी बड़ी से बड़ी दान दे दे, चेज्य या यहाँ तक के पूजा से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। जो पूजा वो भी यांत्रिक विधि, यहाँ पर जो श्री प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया ना कि ये सब यांत्रिकता। भगवान कहते हैं शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, मैं इन सब समस्त विधियों से कोई भी मेरे दर्शन नहीं कर सकता है। तो भगवान से पूछा अर्जुन ने, भाई फिर कैसे दर्शन करेंगे? तो भगवान ने बताया 11.54 में भगवान कहते हैं दत्या त्वरण्यया शक्य अहमेवं विदुर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप, के मुझे अगर कोई साक्षात दर्शन करना चाहता है, ज्ञातुम जो मुझे जानना चाहता है, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन, तत्व से यदि कोई जानना चाहता है, यदि वास्तव में देखना चाहता है, तो केवल इस विधि से, भक्ति की केवल विधि से ही तुम मेरे ज्ञान के इस रहस्य को पा सकते हो। केवल भक्ति एकमात्र ऐसी विधि है जिससे कि भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को समझा जा सकता है। भगवान कोई ऐसे नहीं है कि आप है ना अष्टांग योग की विधियां करो, कभी नाक को ऐसे प्रेस करो, या फिर कभी हाथ को ऐसे करके खड़ा कर दो, कभी है ना फिंगर को ऐसे करो, या फिर अपने हाथों को ऐसे करो, या फिर अंखों को इधर लगाओ, इससे भगवान नहीं दिखते। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, कि वेद में जितनी भी क्रियाएं लिखी हुई हैं उनके द्वारा भगवान को प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है, परंतु अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा प्रयास नहीं करते, तो वो भगवान को अदुर्लभम बहुत ही आसानी से, भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, जो भगवान के भक्त होते भगवान कहते हैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ। यहाँ तक कह दिया अहम भक्त पराधीन, जो भक्ति है, जो भक्त भक्ति करते हैं उनके तो पराधीन होता हूँ, वो मुझे बुलाए भी नहीं तो भी उनके आगे पीछे घूम रहा होता हूँ कि ना कब मेरा नाम ले लेंगे और मुझे आने में समय ना लग जाए, इसलिए हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हमारे हृदय में वो प्योर भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्यम वाली भक्ति नहीं है तो हम भगवान की शरण में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वरतर्षभ, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, लेकिन उनमें से कोई भी आते हैं भगवान कहते हैं जनानाम सुकृति नो, वो सब सुकृति नो है, वो अच्छे लोग हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी मेरी शरण ग्रहण की है, कहीं और नहीं गए हैं। तो भले ही हम शुरू में भगवान के पास किसी इच्छा के लिए आते हैं, इच्छा को पूरा करने के लिए, जैसे हम जानते हैं ध्रुव भगत वो क्यों गए थे भगवान के पास इच्छा पूरी करने के लिए, वो राज्य चाहते थे, लेकिन जब भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है ना जीव का, तो भौतिक इच्छाएं धीरे 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 समाप्त हो जाती हैं, हृदय के अंदर जो रजोगुण है तमोगुण है वो सब समाप्त हो जाते हैं और जीव शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है, और फिर भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी उसे नहीं सुहाता, फिर और कोई भौतिक वस्तु की उसे इच्छा भी नहीं रह जाती है, उसे आवश्यकता भी नहीं रह जाती है, क्योंकि वो इतना संतुष्ट हो जाता है। जैसे हमने कल पढ़ा यम लब्ध्वान चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः, जब भगवान की प्योर भक्ति, भगवान के पवित्र नाम का आस्वादन, उसका रस जब भक्त के जिह्वा पर आ जाता है, फिर उससे अधिक और कुछ उसे लगता ही नहीं है, भौतिक वस्तु उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती नहीं है। इसलिए भागवत कहता है 2.3.10 में अत्यंत सुंदर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी, अगर अकाम है यानी उसके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं भौतिक वासनाएं सारी समाप्त हो गई हैं, लेकिन सर्व कामों वा, जिसके अंदर समस्त भौतिक इच्छाएं हैं, मुझे ये भी चाहिए हर एक वस्तु की ओर उसकी इच्छा हो, अकामा सर्व कामों वा मोक्ष काम उदार भी, अगर और उसे दूसरी इच्छाएं नहीं है लेकिन फिर भी मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष काम यानी मोक्ष की इच्छा है, उदार भी, उदार भी का मतलब होता है यदि उसकी बुद्धि अच्छी है। अब समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि अच्छी है, अब भले उसके अंदर कोई कामना नहीं है, अकाम है, सर्व काम बहुत सारी सारी ख्वाहिशात हैं, या खाली मोक्ष की कामना है, उसे करना क्या है, तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रेन मतलब बहुत ही तीव्रता के साथ भक्ति, भक्ति के साथ भगवान के साथ अपना योग जोड़ना है, भक्ति योग में भगवान की सेवा करनी है। भले ही आप भक्ति करो, भले आपके अंदर सारी इच्छाएं हैं, लेकिन तीव्रेन भक्ति योग है ना, यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है उनकी यदि आप भक्ति करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो सकाम इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, जिसके कारण आपने भगवान की शरण ली थी, जैसे दुर्व भक्त बोलते हैं कि अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, भगवान को कहते हैं स्वामी कृतार्थ हो हम वरम नवांसे, कि मुझे अब कोई भी वर चाहिए नहीं, क्योंकि ये आप तो हीरा हो, मुझे हीरा प्राप्त हो गया है, अब भौतिक इन कांच के टुकड़ों को लेकर मैं क्या करूंगा। तो अगर कोई ज्ञानी है, उसके अंदर बुद्धि है, तो फिर वो क्या होगा, भले उसके अंदर इच्छाएं हो ना हो, मोक्ष की इच्छा हो, किधर जाना उसको, भगवान के पास। लेकिन भगवान कहते हैं 7.20 में कि कामस्तस्य हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, लेकिन उसके उसका ज्ञान जब इच्छाएं इच्छाओं द्वारा मारा जाता है, बुद्धि है उसके पास लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है भौतिक इच्छाओं के द्वारा, तो फिर क्या करता है, फिर वो दूसरे देवताओं के पास जाता है, और तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया, और इस तरह से अपने उनकी जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से देवताओं को खुश करता है और अपनी इच्छाओं की पूरा करने की का प्रयत्न करता है। वास्तविक में क्या है कि भले अगर जीव आत्मा संसार में आ गई है, कोई भौतिक इच्छा भी है, तो भी उसे भगवान के पास जाना चाहिए, और उस तरह से क्या होगा, भगवान उसे वही देंगे जो कि उसके लिए अच्छा है, भगवान उसे वो उसकी इच्छा भी पूरी करेंगे और साथ साथ में उसकी इच्छा को समाप्त भी करते जाएंगे, और जो वास्तविक इच्छा जिससे कि उसका वाकई में कल्याण होगा वही उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। जैसे अगर किसी बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है और वो अपने पिता को बोलता है कि मुझे जरूरी लेकर दो, मुझे पीना है पीना है, तो पिताजी क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा, इसका गला पहले से इसको खांसी, गला और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, तो उसको बोलता है देखो बेटा ये कोल्ड ड्रिंक है ना वो नहीं पीते, मैं आपको अच्छा सा मिल्क शेक बना के देता हूँ, ठीक है, फिर उसमें आइस भी नहीं डालता, आराम से मिल्क शेक बना के उसको देता है, तो उसको अच्छा लगता है, उस तरह से उसका फायदा भी हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसकी वो जो भौतिक इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी और वास्तविक इच्छा जिससे उसका कल्याण है वो इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह से भगवान जब भक्त भगवान की शरण में जाता है, भले वो किसी भौतिक इच्छा के कारण जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भगवान उसे इतना प्रेम और स्वाद देते हैं भक्ति का, भक्तों के संग में जो उसको आनंद आने लगता है, फिर उसकी धीरे धीरे भौतिक समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा यदृक्षुस्तत अहम भूय प्रणिधाय मनोरिधि, कि मेरे हृदय के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी भगवान को पुनः दर्शन करने की, और मैंने पुनः वह प्रयास प्रारंभ किया, वीक्षमाणोपि न पश्यम, लेकिन फिर भी उनको नहीं देख पाया, अवित्रितम इवातुर, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो रहा था। वास्तव में भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में, भक्त्यामाम अभिजानन्ति यावान यस्यास्मि तत्वतः, देखो अर्जुन मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है जैसा कि मैं हूँ, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, और इस प्रकार जब प्योर भक्ति कोई करता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है और मेरा दर्शन कर सकता है, इन भौतिक आंखों के द्वारा देखना संभव नहीं है भगवान को, तो हमें वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की इन सुंदर 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 कथाओं को, इन चरित्रों को, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को श्रवण करना पड़ेगा। यही प्योर भक्ति है और इसी को करते करते एक दिन अवश्य भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।